ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम श्रीमद् भागवत के इस कथा में श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। कर्म बंधन इस अध्याय का नाम है और श्लोक क्रमांक 23। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानम् यद् ब्रह्मदर्शनम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानम् यद् ब्रह्मदर्शनम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानम् यद् ब्रह्मदर्शनम्। बोलिए। जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानम् यद् ब्रह्मदर्शनम्। वासुदेवे भगवती भक्तियोग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानम् यद् ब्रह्मदर्शनम्। वासुदेवे भगवती भक्तियोग प्रयोजितः वैराग्यम् ज्ञानम् यद् ब्रह्मदर्शनम्। वासुदेवे भगवती भक्तियोग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानम् यद् ब्रह्मदर्शनम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानम् यद् ब्रह्मदर्शनम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानम् यद् ब्रह्मदर्शनम्। वासुदेवे भगवती भक्तियोगे प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानम् यद् ब्रह्मदर्शनम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। और कोई? हरे कृष्णा। वासुदेवे कृष्ण के प्रति, भगवती भगवान, भक्ति योगः भक्ति प्रयोजितः की गई, जनयति उत्पन्न करती है, आशु तुरंत, वैराग्यम विरक्ति, ज्ञानम ज्ञान, यथ जो ब्रह्म दर्शनम आत्म साक्षात्कार। अनुवाद इस प्रकार से है, कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। कृष्ण चेतना में बोलिए लगने से और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार इसमें प्रगति करना संभव है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं कि भक्ति योग उन लोगों के लिए है जो दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य में आगे नहीं है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो समग्र कृष्ण चेतना से भक्ति में लगा रहता है उसे न तो वैराग्य के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ता है, न दिव्य ज्ञान जागृत होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अविचल भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसमें स्वतः देवताओं के गुण आ जाते हैं। कोई ये नहीं खोज कर सकता है कि ये गुण भक्तों में कैसे आते हैं, किंतु होता यही है। ऐसा एक उदाहरण है, एक शिकारी जो पशुओं को मारने में बड़ा मज़ा लेता था किंतु भक्त हो जाने पर वो चींटी मारने को भी तैयार नहीं था। ऐसा होता है भक्त का गुण। जो लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें चाहिए कि समय खोए बिना विशुद्ध भक्ति में लग जाएं। परम सत्य विषयक ज्ञान के बारे में किसी निश्चित मत तक पहुंचने में इस श्लोक में आया हुआ ब्रह्म दर्शनम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शब्द का अर्थ है अध्यात्म का अनुभव या ज्ञान। वासुदेव की सेवा करने वाला ही ब्रह्म को समझ सकता है। यदि ब्रह्म निराकार है तो दर्शनम अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दर्शनम तो वासुदेव भगवान को देखने को बताता है। जब तक देखने वाला तथा देखा जाने वाला दर्शनीय व्यक्ति न हो तब तक दर्शनम नहीं हो सकता। ब्रह्म दर्शनम का अर्थ है जो भी मनुष्य भगवान को देखता है उसे तुरंत निराकार ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। भक्त को ब्रह्म की प्रकृति जानने के लिए अलग से प्रयास करने की प्रवृत्ति या आवश्यकता नहीं रहती है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में होती है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्त तुरंत परम सत्य में स्वरूप सिद्ध हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत ही कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे आपके बीच में बैठने का मौका दिया। चंडीगढ़ मंदिर से मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है। हमारे एक परम मित्र यहाँ पर आए थे 2003 में, उन्होंने यहीं पर अपना शरीर त्याग दिया था गेस्ट हाउस में। तो उसके उपलक्ष्य में प्रथम हम इस मंदिर में आए थे। उनका नाम था देवकी सुत प्रभु। उनको बहुत ही युवा अवस्था में कुछ जानलेवा बीमारी हो गई थी लीवर की, और उसी में 39 ईयर्स में उनका देहांत हो गया था। तो उसी उपलक्ष्य में हम चंडीगढ़ मंदिर में सबसे पहले आए थे। और जो प्रेम आप लोगों ने, इन मंदिर के अधिकारियों ने, प्रभु जी भक्ति विनोद प्रभु जी ने दिखाया उसके प्रति, जो जिम्मेदारी, जो अपनापन, परिवार की भावना जो दिखाई, बड़ी सराहनीय थी। और उसके लिए भी मैं काफ़ी कृतज्ञ हूँ इस मंदिर की ओर से, इस मंदिर की मंदिर के लिए, क्योंकि पारिवारिक भावना ही हमारा कृष्ण भावना का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब तक भक्त लोग उस पारिवारिक भावना को नहीं समझते हैं और नहीं अपनाते हैं, तब तक हमारा प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है वो यशस्वी नहीं है। और पारिवारिक भावना या तो एक मंदिर के जितने भक्त हैं उनके बीच में होनी चाहिए, फिर इस विभाग में जितने बाहर से आते हैं उनके बीच में होनी चाहिए, और यहाँ तक सीमित न रहकर जितने भी प्रभुपाद जी के सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो हम सब एक परिवार हैं। क्योंकि सब जगह पर प्रभुपाद जी का छत्र छाया, कृपा छत्र है, उपलब्ध है। उन्हीं के कृपा से हम चलते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पर अपने जीवन को बिताने का प्रयास करते हैं। और जब हम हमारे सारे मंदिरों के परिवार के सदस्यों को अपना समझते हैं, उसके बाद में वसुधैव कुटुंबकम, उसके बाद में सब भगवान का परिवार है। ममय वांचो जीवलोके के जीव भूत सनातन, ये उत्तम अधिकारी की अवस्था है। उत्तम अधिकारी हर जीव में, हर प्राणी में भगवान का उपस्थिति को देखते हैं, इसलिए वो उत्तम अधिकारी के रूप में जानते हैं। उत्तम अधिकारी यहाँ से आगे बढ़कर न केवल सब जीवों में भगवान के अस्तित्व को देखते हैं, लेकिन जो निर्जीव हैं वस्तु, जो निर्जीव निर्माण है भगवान का, उसमें भी भगवान को देखते हैं। दो अणु अणु के अंदर भी भगवान को देखते हैं, और दो अणु के बीच में जो जगह है उसमें भी भगवान को देखते हैं। इस तरह से उत्तम अधिकारी की चेतना होती है। रूप गोस्वामी समझाते हैं इस बात को। तो ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसकी पार्श्वभूमि ऐसी है कि देवाहुति का विवाह कर्दम मुनि से होता है, और कर्दम मुनि इतने तपस्वी होते हैं कि विवाह के बाद तुरंत ही तपस्या में लग जाते हैं। ऐसा तो कभी होता नहीं ना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं शादी के बाद। लेकिन श्रीमद् भागवत के जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जिसकी जिसका जो विभूतियाँ का वर्णन हम सुन रहे हैं, वो दिव्य विभूतियाँ हैं। इनका स्मरण करके भी आत्मशुद्धि होती है, इनके बारे में विचार करके भी आत्मशुद्धि होती है। ऐसे दिव्य विभूतियाँ हैं इनका वर्णन किया जा रहा है। सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। देवाहुति का सौंदर्य था वो ऐसा पारलौकिक सौंदर्य था कि वो जब बालकपन में, अभी तक तो पूरी युवा अवस्था में भी नहीं आई है, बालक अवस्था में जब अपने छत में खिला करती थी, तो उसको देखने के लिए स्वर्ग लोक से विमान में बैठकर देवता आते थे, और उसके सौंदर्य को देखने के बाद में विमान से बेहोश होकर गिर जाते थे। सोच सकते हैं आप, भाव विभोर होकर, काम भावना से लिप्त होकर, हाँ, ओवरवेल्म्ड विथ लस्टी डिजायर्स, वो बेहोश हो जाते थे और विमान से गिर जाते थे। ऐसे सौंदर्यवती के साथ में कर्दम मुनि का विवाह हुआ। और देखिए, उनके पिताजी स्वयंभू मनु कितने महान पिताजी हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि मेरा जमाई तो मेरे बराबर का होना चाहिए, उसका भी एक राज्य होना चाहिए, उसका भी प्रजा होनी चाहिए, उसका भी अधिकार होना चाहिए, वो भी बलशाली होना चाहिए, वो वीर पुरुष होना चाहिए। उन्होंने जंगल में जो एक फकीर व्यक्ति है, इसके पास में कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, ना कोई अधिकार है, ना कुछ है, जंगल में भजन में मस्त है वो, ऐसे व्यक्ति के पास ले गए अपने पत्नी कन्या को, और ऐसी परवरिश, ऐसी कृष्ण कॉन्शियस कल्चर उसको दिया था अपनी लड़की को। उसने भी ऐसा नहीं कहा, पापा कहाँ ले जा रहे हो मुझे आप, ये कौन सा पति ढूंढ रहे हो, मुझे देखो आप, मैं आपकी पत्नी कन्या हूँ, राजकन्या हूँ, मेरा सौंदर्य देखो, मेरा पोजिशन देखो, कम से कम मेरे योग्य के योग्य कोई वर ढूंढो। ये क्या है, कोई धन नहीं, कोई आमदनी नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई नौकरी नहीं। वो भी इतनी उच्च चेतना वाली कन्या थी कि उन्होंने पति के आज्ञा के अनुसार जो पति कर रहे हैं, पिताजी कर रहे, सॉरी, जो पता पिताजी कर रहे हैं उसको योग्य समझकर वो शरणागत हो गई, और वहीं जंगल में शादी, और तुरंत उसी की उसके बाद पिताजी छोड़ के चले गए उसको कन्यादान करके, झोपड़ी में रहने लगी, और ये विवाह करके तुरंत तुरंत उस अगले समय तपस्या। तो लंबे समय तक ये तपस्या में उनकी सहायता करती रही, और जब तक पति भोजन नहीं करता है तो पत्नी भोजन कैसे करेगी, इसलिए वो भी व्रत में रही। पूरा सौंदर्य उसका सिकुड़ गया, उसके सुंदर केश जो है वो विद्रूप हो गए, शरीर विद्रूप हो गया, उसको पहचानना मुश्किल हो गया। एक एक नौजवान नवपरिणीत नवविवाहित स्त्री का अटैचमेंट कितना होता है अपने सौंदर्य के प्रति, कितना मेकअप करते हैं शादी के लिए, सब कुछ छोड़कर पति की सेवा में लगी हुई है। फिर काफ़ी समय के बाद में पति थोड़ा सा विश्राम लेते हैं अपनी तपस्या और ध्यान से, वो देखते हैं अरे पत्नी तो लगी हुई है इतने दिन से, मैंने देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं उसके बारे में, तो उनकी इच्छा अभी क्या है, पूछना चाहिए, उनकी इच्छा पूर्ण भी करना चाहिए। तो उन्हें संतान की इच्छा किया, पहले 9 कन्याओं को जन्म दिया, उसके बाद में स्वयं भगवान को जन्म दिया देवावती ने। देखिए आप कितना बल है उनके अंदर, हाँ, स्वयं भगवान को आकर्षित किया अपने अपने पत्नी के गर्भ में, उन्होंने आह्वान किया, आकर्षित किया, प्रस्तापित किया, पुत्र के रूप में आकर्षित किया, और जन्म हुआ, और स्वयं भगवान परम भगवान जो है कपिल देव भगवान के रूप में उनके पुत्र के रूप में आए। ये उनके दिव्यता का प्रमाण देता है दोनों का, कि वो केवल सौंदर्यवती नहीं थी, वो एक बड़ी श्रेष्ठ भक्त थी भगवान की, और कर्दम मुनि कोई गैर जिम्मेदार ऐसे इरिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं थे, कि क्या है ये, कुछ धंधा नहीं, कुछ खाना पीना नहीं, पत्नी की देखभाल नहीं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये जो घटना है कि उनके गर्भ में, कर्दम मुनि के गर्भ और इनके गर्भ में पुत्र के रूप में भगवान आए, ये उनकी प्रमाण है उनका कि वो कौन है, उसकी पहचान है ये। और उसके बाद तुरंत चले गए वापस जंगल में, पुत्र देकर फिर वापस चले गए तपस्या करने के लिए। इसकी नकल तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जो भाव है भक्ति का उसको जरूर हम प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि एक सक्षम पुत्र देकर वो फिर चले गए। फिर पुत्र जब बड़े हो गए तो देवाहुति की चेतना देखिए, आप कहेंगे अरे क्या तुमको तो मैंने बड़ा किया, तुम्हारा सब टट्टी पेशाब मैंने साफ किया, तुमको नहलाया, तुमको वस्त्र पहनाए, भोजन कराया, स्तनपान कराया, तुमसे मैं कैसे सीख सकती हूँ, तुमको सिखाना मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना, तुमको अच्छी ट्रेनिंग देना मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। लेकिन वो सब किया उन्होंने, लेकिन उसके प्रति कोई गर्व नहीं है कि मैं आपकी माता हूँ। यथावकाश जब पुत्र युवावस्था में आया तो उन्होंने माता को उपदेश किया भगवान होने के नाते। अब देखिए इसका, इस भागवतम का फ्रंट देखिए, पुत्र जो है वो ऊंचे स्थान पर बैठा है, माता नीचे स्थान पर बैठी, और पुत्र उनको उपदेश कर रहा है, माता प्रश्न कर रही है, गुरु बना दिया, गुरु अपने पुत्र को स्वीकार कर लिया, और भगवान ने भी अपनी माता को उपदेश किया। तो नासिक क्षेत्र में आप जाएंगे ना जहाँ गोदावरी चलती है, वहाँ पर एक सुंदर स्थान है, मेन नासिक से थोड़ा दूर है 50-60 किलोमीटर, जहाँ पर एक जगह पर वो जटायु का आश्रम है, उसके आगे अगस्त्य मुनि का आश्रम है, उसके आगे आते हुए नासिक की ओर आते हुए एक तीर्थ है कपिलधारा तीर्थ, जहाँ पर हनुमान जी ने आकर राक्षस का वध किया था। उस तीर्थ में कई सारी घटनाएँ हुई है, अनेक घटनाएँ हुई हैं ऐतिहासिक और पौराणिक, और उसमें एक घटना यह है कि उस स्थान पर कपिल देव जी ने अपनी माता देवाहुति को उपदेश किया था, और वह इतना दिव्य उपदेश था, इतना कल्याणकारी था, इतना आत्मशुद्धिकारक था, कि वो उपदेश को हृदय से ग्रहण करने के पश्चात देवाहुति का रूपांतर नदी में हुआ, शी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिवर, कपिला नदी बोलते हैं उसको, और वो कपिला नदी वहाँ से निकलती है और फिर वहाँ से आगे जाकर गोदावरी को मिलती है, जहाँ पर अग्नि तीर्थ है, जहाँ पर वनवास में प्रभु रामचंद्र ने जब देखा कि शूर्पणखा का अपमान हो चुका है, मतलब लक्ष्मण के हाथों नाक और कान काट जा चुके हैं, तो समझ गए कि आगे अभी शुरू होगा आतंक, अभी इतना आसान समय नहीं होगा। तो फिर वो लक्ष्मण को उन्होंने किसी काम पे लगा दिया और अपनी सीता देवी पत्नी को वो अग्नि तीर्थ में ले गए, जहाँ पर कपिला और गोदावरी का संगम होता है। और वहाँ पर उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया तो अग्निदेव प्रकट हो गए। अभी भी वहाँ पर अग्निकुंड है, फिर त्रिदेव तीर्थ भी है, वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। और उनके साक्षी में भगवान रामचंद्र ने अपनी पत्नी को अग्निदेव के हाथों सौंप दिया और उनकी तरफ से छाया सीता को ले लिया आगे की लीला को संपन्न करने के लिए। इसलिए लक्ष्मण को पता नहीं था कि वो मूल सीता देवी है कि और कोई है। तो छाया सीता को लेके फिर लौट के आए, फिर आगे का वो खर दूषण त्रिशीर का वध हुआ और फिर आगे जो भी हुआ रामायण। तो ये कपिला नदी वहाँ जाकर गोदावरी को मिलती है, बहुत सुंदर पवित्र तीर्थ है वो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक नम्रता का श्रेष्ठ उदाहरण है, कई अनेक श्रेष्ठ गुणों के साथ में नम्रता का एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। एक माता होकर भी अपने पुत्र के सामने शिष्य के रूप में बैठकर उपदेश सुन रहे हैं। अरे हमको तो थोड़ा सा समझो, अभी हम गृहस्थ हैं है ना, और हमारे आने के 15 साल के बाद में कोई लड़का IIT से आता है और ब्रह्मचारी बनता है और 5 साल के अंदर फिर सारे शास्त्रों को पढ़ता है और ऐसी ऐसी आध्यात्मिक प्रगति करता है। तो हमको बार बार लगता है अरे ये तो जूनियर है, तो 15 साल के बाद में। और जब कथा में बैठेगा तो बोलेंगे अरे तो बच्चे हैं अभी सारे। ऐसे हमारे मन में हमेशा विचार चलते रहता है, क्योंकि तो हमारी आसक्ति हमारे पद से और हमारे जो भी छोटी मोटी सीनियोरिटी है उससे इतनी रहती है कि हम जूनियर व्यक्ति से सुन ही नहीं सकते। हाँ कथा में बैठेंगे ऐसे ऐसे बैठे, ठीक है देखेंगे क्या बोल रहे हैं, कितना तक पढ़ा है देख लेंगे उसको लेकिन वो ग्रहण शक्ति नहीं होती है, ये हमारी कंडीशनिंग है, हमारी बद्धता है। लेकिन देवावती यहाँ पर बता रहे, जिसको जन्म दिया, जिसको स्तनपान कराया, जिसको चलने चलना सिखाया, जिसको बोलना सिखाया, हर चीज उसका देखा, हाँ उस व्यक्ति से ही वो गुरु बनाकर उपदेश सुन रही है। हालांकि वो भगवान है वो अलग बात है, लेकिन वो नम्रता होनी चाहिए ना। तो इसलिए ये संवाद भागवतम में आता है, इन दोनों व्यक्तित्वों का, उनके पिताजियों का, उनका सर का वर्णन भागवत में क्यों आता है, क्योंकि ये पारलौकिक व्यक्तित्व है, क्योंकि ये शास्त्र अमलम पुराणम है, इसमें कोई मल नहीं है, इसमें कोई कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग कांड, राजयोग ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। केवल शुद्ध भक्ति के लिए जो अनुकूल है, शुद्ध भक्ति के अंतर्गत सम्मिलित है, वही घटनाएं और वही व्यक्तियों का इसमें वर्णन किया गया है। वो ययाति के वासनाओं का भी वर्णन किया है, लेकिन फिर भी उसका जो कंक्लूजन है वो शुद्ध भक्ति पूर्ण है। इसलिए वो भी आपको लगेगा कि ऐसा क्यों सब दिया है नारद मुनि, फिर वो शी गोट और ही गोट की कथा बताते हैं तो आपको लगेगा भागवत में क्यों आ रहे हैं, तो अमलम पुराण में। लेकिन फिर भी उसका कंक्लूजन जो है, नतीजा जो है उसका सारांश जो है वो शुद्ध भक्ति पे आधारित है, इसलिए वो श्रीमद् भागवत में प्रवेश प्राप्त करता है। तो आज के श्लोक में कपिल मुनि जी बोल रहे हैं अपने माता को। उसके पहले उन्होंने कहा था कि मैं आपको सलाह देता हूं कि आप भगवान के शरण ग्रहण करें, जिनके चरण कमल पूजनीय है, इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह से आप देवी भक्ति को प्राप्त हो सकेंगी। इसके आगे आप पीछे पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ा आपने होगा, उसमें वो अलग अलग चीजें करने से क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पहुंचता है जीव, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। इसको सांख्य योग कहते हैं, बहुत तकनीकी तरीके से वो अपने माता को समझा रहे हैं। वैसे भगवत गीता में जो कहा वो अलग नहीं है, यहाँ पर जो कहा गया अलग नहीं है, जब भगवान ने उद्धव को बाद में भागवत में सुनाया वो अलग नहीं है, लेकिन वो अलग अलग प्रसंग में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से वही बात बताई गई है, ताकि हम सब लोगों को ठीक से समझ में आ जाए। तो वो समझा रहे हैं कि बहुत लोग अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, वो कोई हमेशा जब तक मैं हूँ तब तक हमको सुख चाहिए, उसके लिए सुख के लिए प्रयास करते रहते हैं। दो चीज़ के लिए लोग आम तौर पर, चाहे भक्त हो या नहीं हो, दो चीज़ के लिए मेहनत करता है, सुख प्राप्त हो और दुख नहीं मिले। दैट इज द ओनली बेसिस, यही इसी दो मूलभूत कार्यों पर हम लोग रहते हैं, भले जब करने लगे बाद भी सुख मिलना चाहिए, और दुख नहीं आना चाहिए। दुख आने बाद उसका निराकरण होना चाहिए और सुख आएगा तो सुख की वृद्धि होनी चाहिए, सुख बना रहना चाहिए। इसी के प्रयास में पूरा जीवन चलता है, चाहे वो मंदिर के ब्रह्मचारियों का जीवन हो, बाहर के गृहस्थों का जीवन हो, राजा का जीवन हो या रंक का जीवन हो। तो कहते हैं कि सब लोग बेसिकली हमारे अस्तित्व को आनंदपूर्ण सुखपूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन अंतिमतः अगर हमने इस यहाँ का जीवन भी एक लगातार या बहुत ही रिजनेबल तरीके से अगर सुखपूर्ण बना दिया, फिर भी हमको दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि वो कर्मों का हिसाब किताब तो रखते ही हैं हमारे चित्रगुप्त और यमराज जी, वो कोई कोई छुट्टा नहीं उसके अंदर से, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो एंड में जो आपका हिसाब किताब होगा उसके अनुसार दोबारा आना होगा, दोबारी जगह कई जगह जन्म लेना होगा, मनुष्य का होगा तो स्त्री का पुरुष का जैसे भी हो अनुकूल लेना होगा, या देवता के रूप में जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, बहुत विस्तार में वर्णन करते हैं, ऊपर जाएंगे फिर वहां पर कहते हैं सोम वृक्ष के रस का पान करेंगे, इंद्रियों को वो क्या कहते हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंद्रियों के जो भोग करने की शक्ति है उसको बढ़ाएंगे बहुत, और आप जो गुलाब जाम खाकर यहाँ पर आनंद पाएंगे वहाँ खाएंगे तो उसका हजारों गुना आनंद मिलेगा आपको उसी गुलाब जाम का, क्योंकि इंद्रियों की शक्ति जो है ना भोगने की वो बहुत पावरफुल रहती है, तो वो खाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद क्षण पुण्य मर्तल्यो के विशंति, जब वो अपना पुण्य का हिसाब किताब समाप्त हो जाएगा तो फिर वो दोबारा पृथ्वी पर आएगा, फिर पृथ्वी पर जो भी उसके हिसाब में लिखा है वो जन्म प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर फिर झगड़ेगा भोग प्राप्त करने के लिए। एक प्रकार के लोग हो गए जो सुख पर विश्वास करते हैं, बुरा काम नहीं करते हैं लेकिन सुख चाहिए उनको, तो सुख के लिए कर्म कांड करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, फिर उसके फल में स्वर्ग जाते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर भी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश बिना पाप किए भी लगे रहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुख भोगते रहते हैं। सुख के प्रयास में फिर भी वो जो बेसिक मूलभूत दुख है वो प्राप्त रहता है, होते रहता है। फिर कोई व्यक्ति उसको देखता है, अरे सब लोग ऐसे ही काम करके दुख भोग रहे हैं, मैं नहीं चाहता इनके अंदर जाने के लिए, मैं तो बड़ा समझ चुका हूँ, मैं शास्त्रों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करके ये सब बेकार है, बकवास है, वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं सब इसमें नहीं पढ़ने वाला, मैं तो विरक्त हो जाऊँगा और न ध्यान करूँगा और मुक्ति प्राप्त करना चाहूँगा, मुझे इसमें जान चुका हूँ मैं कि अनंत जन्मों में यहाँ जीने कर भी सुख नहीं मिलने वाला है, दुख से ही भरा हुआ है सब कुछ, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हम लोग कोशिश करके सुख प्राप्त करेंगे, फिर वही विरक्ति प्राप्त करने को जाएगा। लेकिन विरक्ति प्राप्त करने के बाद भी जब तक उसको भगवान के व्यक्तित्व के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता है तो फिर वो ब्रह्म ज्योति में जाएगा, वहां पर तो सत्य है, सत्य का प्रधान प्रभाव है, वहां पर चित्त आनंद पूर्ण तरह विकसित नहीं होते, लेकिन सत्य जो है मतलब आपका चिरंतन अस्तित्व बिल्कुल दुख दुख के बिना, ऐसे फिर उसको बोर हो जाता है वहां पर, फिर वो भागवत में लिखा है कि दोबारा जन्म लेता है, या तो राजा बनकर जन्म लेता है, या तो बड़ा विद्यावान बनकर जन्म लेता है, बड़ा सुंदर बनकर जन्म लेता है, या बड़े ऐश्वर्य संपन्न परिवार में आता है। वो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि फिर वो हॉस्पिटल खोलता है, फिर वो धर्मादाय दुकान खोलता है, फिर वो अनाथों को भोजन खिलाता है, फिर वापस स्वर्ग में जाता है। मतलब सोच रहा है एक तरीके से लेकिन कॉन्क्रीट कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए वापस वो दूसरी दिशा में गया लेकिन आया वापस उधर ही घूम के। तो वो ज्ञानी लोग हैं, पहले कर्मकांडी लोग हैं, सुख की प्राप्ति करने वाले, दूसरे एक ज्ञानी विरक्त दिखते हैं लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वो सूक्ष्म प्रकार का सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मालोक में तो कोई भोग है ही नहीं, लेकिन जो विरक्ति का और तपस्या का जो आनंद है ना, इतना सूक्ष्म होता है कि लोग तो भोजन भी नहीं कर सकते वहां पर, नहीं जरूरत ही नहीं, इतना आनंद है उधर, लेकिन वो भी एक प्रकार का भौतिक सुख है, मन के स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर प्राप्त किया हुआ। उसके बाद भी लोग पतित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की कृपा हो गई और भक्ति में लग गए तो फिर वहां से ही गोलोक जाते हैं, लेकिन फिर वहां से भी लौटते हैं कुछ लोग। इसलिए यहां पर ये सब कुछ बताने के बाद बड़ा विस्तार में समझाया है कपिल देव जी ने, कैसे कैसे लोग कैसे कैसे प्रयास करते हैं और आपको लगेगा कि हाँ मैं भी इस रास्ते का राही हूं, रह चुका हूं मैंने भी ऐसा ही प्रयास पहले किया था, ऐसा आपको लगेगा जब आप पढ़ेंगे तो। अज्ञानवश हम लोग ने भी ये सब कुछ किया हुआ है, लेकिन इसके पहले 22वें श्लोक में और आज के श्लोक में वो बता रहे हैं कि ये सब में है माता, आप अपना समय व्यर्थ मत गवाना, ये बहुत ही अनंत जन्मों का वेस्ट ऑफ टाइम है। इस जन्म में आप कुछ समझो बिजनेस ट्राई करेंगे, 5 साल ट्राई करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये तो बेकार है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं, छोड़ सकते हैं आप। लेकिन ये जो बिजनेस है कर्मकांड के मार्ग का या भक्ति या ज्ञान मार्ग का, ये तो जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब है। उसमें कई जन्म आपके ऐसे व्यर्थ जा सकते हैं, फिर आपको अनुभूति हो सकती है कि अरे मैंने तो बहुत बेकार में समय गंवाया। तो वो कहते हैं कि फिर वो वर्णन करते हैं कि जो लोग विरक्त मार्ग में हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो जब भक्तों को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो मूर्ख लोग हैं, इनको तो ज्ञानवान कुछ है ही नहीं, विरक्ति नहीं है, इसलिए उनको उनके लिए भक्ति बताया गया। तो फिर उस बात को क्लैरिफाई करते हो, क्योंकि ये आप समझाओ ऋषिकेश जाएंगे, आप हरिद्वार जाएंगे या हिमालय में जाएंगे ऊपर, आपको कई ऐसे विरक्त संत मिलेंगे जिनको संसार से कुछ लेना देना नहीं, कोई आसक्ति नहीं, अपने आप में भी बहुत विरक्त रहते हैं, खाते पीते भी बहुत कम है, किसी में उनको रुचि नहीं है, खाली वो ध्यान में लगे रहते हैं बिल्कुल। लेकिन वो जब हम लोगों को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो भोगी लोग हैं, सब खूब खाते हैं, खूब सोते हैं, खूब सब कुछ करते रहते हैं, ये क्या भजन है, ऐसा उनको लगता है। भजन तो विरक्ति में है, विरक्ति के बिना भजन कैसे हो सकता है। तो इस बात से हम लोग कभी कभी बिवल्डर हो जाते हैं। तो हमको तो बताया है चैंट एंड डांस एंड फीस्ट, भगवान की कीर्तन में नाचो फर्स्ट क्लास, उसके बाद प्रसाद पाओ, उसके बाद में किताब वितरण करो, फिर प्रसाद पाओ। चैतन्य चरितामृत तो पूरा प्रसाद का ही वर्णन है, तो ले कोई शास्त्र है, तो खाने पीने की बातें करें बार बार। भक्त लोग यहाँ गए, उधर ये खाया, उधर राघव पंडित ने जो खाना बनाया उसका वर्णन सुनेंगे तो आप भगवत धाम चले जाएंगे। अरे ये खाना खाने के वर्णन करने के बाद भगवत धाम कैसे जा सकते हैं। राघव पंडित के थैली में जो भोजन के सामान रखे गए थे महाप्रभु के लिए, उसका अगर वर्णन भी पढ़ेंगे तो भी भगवत धाम चले जाएंगे। बोले ये कोई शास्त्र है, खाली खाने पीने के बारे में बातें की जा रही है, और जो खा रहे हैं उनके बारे में बातें की जा रही है, और बाद में नाच रहे हैं उनके बारे में बात की जा रही है, ये कैसे भजन हो सकता है। भजन तो ऐसे एकांत में सब विरक्त छोड़कर, धन वन परिवार को छोड़कर ऐसे आराम से बैठकर करना चाहिए, एक भगवंत ध्यान में लीन होना चाहिए, ये भी कोई भजन है। तो जो इसके लिए योग्य नहीं है उनके लिए ये मार्ग है। चलो भाई आपके में अंदर इतनी विरक्ति नहीं है, इतना तपस्या करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो चलो आप नाचो, खाओ पियो, बीच बीच में भगवान का नाम भी लो, चलो फिर जब आप योग्य हो जाओगे तो फिर आप ज्ञान मार्ग में आओगे, फिर विरक्त हो जाओगे, फिर सही रास्ते में आओगे, ऐसा वो लोग सोचते हैं। तो उसका भी निराकरण यहां पर कपिल देव जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस ज्ञान और विरक्ति को वो बड़े कठोर तपस्या से प्राप्त कर रहे हैं, तो बड़ी ही आसानी से भक्ति मार्ग को अपमाने से प्राप्त होती है। तो ये मत समझना कि जो उनको प्राप्त है वो हमको मिलने वाला नहीं है, हम तो बहुत पतित हैं। पतित समझना अच्छा है, लेकिन ऐसा समझना अच्छा नहीं है कि हमारा मार्ग इतना पतित है कि हमको क्या मिलेगा, उनको जो मिलेगा हमको मिलने वाला नहीं है। उसका निराकरण यहाँ पर कर रहे हैं वो कहते हैं ये भक्ति देवी जो है इसके दो पुत्र हैं, एक ज्ञान और एक विरक्ति। जहाँ भक्ति होती है वहाँ पर ज्ञान अपने आप सहज उत्पन्न हो जाता है, और जहाँ ज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ विरक्ति अपने आप आ जाती है। कौन सा ज्ञान? कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ जुड़ना है, उनकी सेवा करना है, उनके भक्तों की सेवा करना है, और बाकी इंद्रिय भोग नश्वर है, वो शाश्वत सुख नहीं देगा, उससे आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, अंतिम लक्ष्य भगवान की सेवा करके भगवत धाम जाना है, वहाँ पर भगवान की चिरंतन सेवा करना है, एक्टिव लाइफ हाँ जीना है। तो कहते हैं कि जैसे ही भगवान की भक्ति का आचरण हम करेंगे, भगवान से आसक्त होना प्रारंभ करेंगे, और अपने आप दुनिया से विरक्ति चालू हो जाएगी। केवल विरक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, ये बंधन कारक है, ये हमको बांध देगा, ये सोचने से मुक्ति नहीं होती है। आपको कुछ पॉजिटिव अटैचमेंट होना चाहिए, तब जाकर वो आपकी विरक्ति काम आएगी। तो भक्ति में जो विरक्ति आती है भजन करने के पश्चात, जप करने के पश्चात, वो एक परिपूर्ण विरक्ति है, क्योंकि भगवान के आसक्ति से साथ वो जुड़ी हुई है, और वो विरक्ति के लिए अलग से मेहनत नहीं की जा रही है, आसक्ति के लिए भगवान के प्रति मेहनत की जा रही है, पॉजिटिव एंगेजमेंट है। हृदय से भगवान के नाम का जप करते हैं, चार नियम पालन करते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं उनके आज्ञा के अनुसार, तो भगवान के प्रति आसक्ति प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सारा प्रयास साधना उस दृष्टि से हो रहा है, तो वो साथ साथ अपने आप ही दुनिया के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है, अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे बालक हमारे घर पे होता है ना, वो कोई गंदा कोई इक्विपमेंट है वो मुंह में डालते रहते हैं बार बार, तो उसको दस्त होते रहते हैं, डॉक्टर बोलेगा अरे वो जो गंदा खिलौना है उसको दूर रखो उससे। तो क्या करूं डॉक्टर साहब, मैं जितनी बार छीनती हूं तो बार बार जोर जोर से रोके, इतना आतंक मचाता है कि मुझे वापस देना पड़ता है उसको। तो फिर क्या बताते हैं बुद्धिमान लोग, अरे वो उसी को छीनने का प्रयास कर रहे हैं आप जिससे वो आ सकते हैं, ऐसा करो उससे बढ़िया एक अच्छा साफ सुथरा जो इन्फेक्टेड नहीं है ऐसा खिलौना ला के दो उसको। तो जैसे ही वो साफ सुथरा वाला जो डॉक्टर के दृष्टि से सही है लेकिन पहले वाले खिलौने से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो दिखाएंगे ना तुरंत वो खिलौना वो फेंक देगा, वो आपको छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो उसको बिना दिखाए पहले छीनने का प्रयास करो, वो बहुत जोर से रोएगा, फिर उसको वापस देंगे आप, फिर आप अपना नया खिलौना लिखाएंगे चमचमाता हुआ, फिर वो ऐसा 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 हाथ करेगा तो ये इधर से फेंक देगा वो, आप उठा के लेके जाएंगे कोई कष्ट नहीं होगा, कोई रोना धोना नहीं, कुछ आतंक नहीं, कुछ नहीं, और फिर उसी में लगा रहेगा वो, उसको याद भी नहीं रहेगी कि मेरा एक खिलौना था जिसमें मैं इतना रोता था, माँ मुझे खींचती थी उससे हाथ से, वो बहुत चिल्लाता था फिर वापस मिलता था, उसको याद भी नहीं आएगा जैसे वो श्रेष्ठ खिलौना उसको प्राप्त होगा। तो फिर ये गंदा खिलौना हाथ से छीनने की प्रक्रिया आसान है कि अच्छा खिलौना देने की प्रक्रिया आसान है? तो जो विरक्त लोग हैं वो गंदा खिलौना छीनने के प्रयास करते रहते हैं और खुद भी रोते रहते हैं, दुनिया को भी रुलाते हैं। और ये प्रक्रिया जो है वो भगवान जो सर्वगुण संपन्न है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, सौंदर्य संपन्न है, जो वैसे ही सर्व आकर्षक है, उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न करने का जब हम प्रयास करते हैं तो दुनिया का जो नश्वर चीजें हैं उसका आनंद जो है अपने आप निकल जाता है, कोई विशेष विशेष अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। और उसके लिए हम श्री मदन मोहन जी को प्रणाम करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, क्योंकि वो बड़े ही कुशलता से जो उनकी शरण लेता है उनके लिए अपने चरणों का संबंध प्रदान करता है, और दुनिया से बड़ा हुआ जो संबंध है हाँ उससे हमको रिहा कर देते हैं, और वहां से हमारी भक्ति शुरू होती है, उसको संबंध ज्ञान कहते हैं। दुनिया के साथ का संबंध तोड़ना, अलग से तोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले भगवान से संबंध बनाना, वो भगवान हमें उस संबंध को देते हैं मदन मोहन जी, और उनके कृपा से जैसे संबंध देते हैं अपने आप ये संबंध छूटने लगता है, उस संबंध पर जब हम कार्य करने लगते हैं, उस पर जब वर्क करने लगते हैं तो अपना आप ये वाला संबंध जो है बिना समझ के छूटने लगता है, बिना कष्ट के, बिना प्रयास के, बिना परेशानी से, तो अपने आप में छूटना। आप कहेंगे आप पैसा छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, सब त्याग कर दो, क्या कर रहे हो, भोग ले रहे हो, छोड़ दो उसको, तो नहीं, मुश्किल मैं आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और फिर गोविंद देव जी हमें वो जो संबंध दिया है उसके आधार पर अपनी सेवा दे देते हैं, जैसे ही ऋषिकेशम भक्त सेवनम जब होता है, श्री राधा माधव भगवान की जय हो, जैसे ही वो हमारी इंद्रियां भगवान की इंद्रियों के संतुष्टि में लग जाते हैं तो ऐसा दिव्य आनंद प्राप्त होता है कि दुनिया में कोई आनंद फिर अच्छा लगता नहीं, पहले इसमें लगता था लेकिन अभी नहीं लगता है, ये अनुभूति होती है। तो वो गोविंद देव जी का हमारे लिए कृपा है, गोविंद देव जी हमें मदन मोहन जी के द्वारा दिए गए संबंधों के आधारित हमको सेवा देते हैं, सेवा में लगा देते हैं, एक्टिव सर्विस। हाँ बैठकर ध्यान नहीं करना है, इंद्रियों के साथ में लगाना है उनकी सेवा में अपने आप को, और वो जो अनुभव है वो भक्ति का सही अनुभव है, उसमें आपको ज्ञान भी होगा। कपिल देव जी यहां समझा रहे हैं कि जब हम भगवान की भक्तिपूर्ण सेवा में लग जाते हैं अपने आप आत्म साक्षात्कार प्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ग्रंथ पढ़ते रहते हैं हम, कथा में बैठे हैं सुनते रहते हैं, लेकिन सेवा के माध्यम से वो कथा में प्राप्त किया हुआ ज्ञान जो है वो अनुभूति के आधार पर प्रकट होता है। वो जो आपने सुना है पढ़ा है प्रभुपाद जी के मुख से, वो आपको सेवा करने के माध्यम से उसकी अनुभूतियां होने लगती है, आपको विश्वास होता है कि ये जो कह रहे हैं वो सही है, मैंने अनुभव किया है उसको, और वो अनुभव के बाद दोबारा पढ़ के बहस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज डीप रियलाइजेशन फ्रॉम विद इन द हार्ट, हृदय के अंदर प्राप्त हुई वो अनुभूति है, उसके प्राप्त होने के बाद में दुनिया चाहे जो भी कुछ कहे आपको फर्क नहीं पड़ता है उससे, दुनिया हंसे रोए मजाक उड़ाए, आपका आपका जो अनुभूति है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और उसके आगे जो ऐसे सेवा में लगा हुआ है उसको गोपीनाथ जी कृपा करते हैं, गोपीनाथ जी उसको सेवा की परिपूर्णता देते हैं। अभी तो थोड़ा सा कभी कभी सेवा में इतनी परिपूर्णता नहीं है, इतना दिल लगता नहीं, कभी लगता है कभी लगता नहीं, कभी आलस्य होता है कभी नहीं होता है, तो पूरी रुचि के साथ पूरे हृदय के साथ में लगन के साथ सेवा करने का अनुभव जो है गोपीनाथ जी देते हैं और उस सेवा को परिपूर्ण कर देते हैं, क्योंकि भक्त जो है प्रामाणिक है, भले वो थोड़ा कच्चा है लेकिन वो प्रामाणिक हृदय से अपने भगवान के चरण में आ रहा है, तो भगवान उसकी प्रामाणिकता को देखकर, सिंसेरिटी को देखकर उसको परिपूर्णता प्रदान करते हैं। फिर उसको भगवान की मुरली की तान सुनाई पड़ती है और ऐसे भक्त को फिर आप बोलेंगे, अरे विरक्ति के लिए प्रयास नहीं किया आपने अलग से, कब विरक्त बने आप? अरे अपने आप में जो भगवान में लीन हो गया सेवा में, कुछ दुनिया में उसको आसक्ति है नहीं, जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त करके तो ऑटोमेटिक हो रहा है यहाँ पर, कोई सेपरेट क्लास करने की जरूरत नहीं, सेपरेट कोर्स करने की जरूरत नहीं, जिंदगी ज्ञान पढ़कर बैठकर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है और ज्ञान प्राप्त होकर जो ज्ञानी लोगों को विरक्ति हो रही है वो भी अपने आप भगवान के साथ जुड़कर हो रही है। जब उसकी इंद्रियां के लिए 24 घंटे का समय है और समझो 24 घंटे का समय भगवान की सेवा में वो आनंद प्राप्त कर रहा है, तो वो 24 घंटे उसकी इंद्रियां भोग के मार्ग में कहां लगे हुई है, ऑटोमेटिक विरक्ति होगी उसकी, उसको पता भी चलेगा नहीं कि मैं विरक्त हो रहा हूं। देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर कि बाय द वे मैं विरक्त भी हो रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आनंदमय भक्ति का मार्ग है और केवल विरक्ति का मार्ग जो है वो कठोर मार्ग है, उसमें रस प्राप्त होने की गारंटी नहीं है। और जीव जो है वो आनंदमयोभ्यासात, उसको आनंद चाहिए, आनंद को प्राप्त करने की इच्छा रखना, आनंद के लिए सोचना कोई पाप नहीं है, वो आपका स्वभाव है, यू आर मेड ऑफ दैट सच्चिदानंद, इन तीन चीजों से आप बने हुए हैं, हम बने हुए हैं। तो आनंद को प्राप्त करना, आनंद को अनुभव करना आत्मा का प्राकृतिक स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है आत्मा का, तो उसको उसके लिए मैं सोचना और मेहनत करना और इच्छा करना उस पर कोई पाप नहीं है, तो वो उसकी पूर्ति भक्ति मार्ग में होती है। इसलिए ज्ञान मार्ग के लोग विरक्ति प्राप्त करके ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, विलीन होते हैं, वहां पर कई हजारों लाखों युग तक रहते हैं, फिर दोबारा पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि उनके आनंद की प्रवृत्ति वहां तृप्त नहीं होती है। सत प्रवृत्ति तृप्त हो सकती है, चित प्रवृत्ति ज्ञान के मार्ग पर आधार पर तृप्त हो सकती है, लेकिन आनंद की प्रवृत्ति जो है वो एक दूसरे के आदान प्रदान में है, एक दूसरे की सेवा में है, रिलेशनशिप में है, समुदाय में है, पारिवारिक जीवन में है, वो पारिवारिक जीवन गौलोक वृंदावन में भगवान प्रकट करते हैं। तो जब वो उसका एक सैंपल हम लोग यहाँ पर अनुभव नहीं करते हैं तब तक वो भटक नहीं है, लेकिन जब वो पारिवारिक आनंद का आदान प्रदान भक्तों के बीच में होता है, प्रेम से, निरपेक्ष भावना से, निस्वार्थ भावना से, कोई निष्कपट भावना से जब होता है, तब वो दोबारा ब्रह्मचर्य जाता नहीं है, वो सीधे गौलोक पहुंच जाता है। तो प्रभुपाद जी ने ये गौलोक के सेंटर्स खड़े किए। हम लोग को लगता होगा क्या है, सुबह खिचड़ी मिलती है, उधर को मिठाई मिलती नहीं है, क्या पकौड़ा तो बनते नहीं है, वो मंदिर में देखो पकौड़ा बनता है, ये मंदिर में तो ऐसा है, ऐसा लगता रहेगा, लेकिन हम लोग पकौड़ा खाने के लिए थोड़ी यहाँ पर आए, पकौड़ा तो बाहर भी खाते थे जब बाहर थे, है ना, भक्ति मार्ग में आए पकौड़ा भी मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन पकौड़े के लिए हम नहीं आए, हम लोग यहाँ पर भगवान की प्राप्ति करने के लिए आए। वी हैव टू रिमाइंड अवर सेल्फ अगेन अगेन व्हाई आई हैव कम हियर। आप लोगों ने इतना सब कुछ छोड़ के मंदिर में रहते हो आप, तो हमको याद करना चाहिए हम लोग क्यों आए थे, किस प्रेरणा से आए थे, क्या भाव लेकर आए थे दुनिया के प्रति कि नहीं चाहिए हमको, हमको कुछ अलग चाहिए, और यहाँ पर वो मिल रहा था इसलिए हम लोग यहाँ पर ज्वाइन हो गए। तो कुछ समय के बाद में भूलना नहीं चाहिए उस बात को कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और क्यों आना चाहिए हमको यहाँ पर, ये किस लिए प्रभुपाद जी ने बनाया है, ये उन्होंने वैकुंठ का एक सैंपल बनाया है। तमाल कृष्ण महाराज जी कहते थे कि मंदिर का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मंदिर का उद्देश्य वो है जो गौलोक की अनुभूतियां हैं, भगवान के भक्तों के साथ में आदान प्रदान में जो प्रेम की अनुभूतियां हैं उसको अनुभव करने के लिए ये सेंटर बनाए गए हैं। कितना ऊंचा उद्देश्य, देखो आप, जस्ट टू एक्सपीरियंस द लव एंड अफेक्शन ऑफ द डिवोटीज दैट हैज बीन एक्सपीरियंस्ड, दैट इज एक्सपीरियंस इन गौलोका, टू एक्सपीरियंस दैट वी हैव कम हियर, और वैसा वातावरण यहां पर होना चाहिए, तब ये सारे जो शास्त्र आप पढ़ रहे हैं आपके लिए बहुत साक्ष्यपूर्ण हो जाएंगे, यानी कि रेलेवेंट हो जाएंगे कि यस व्हाट वी आर रीडिंग इज मोस्ट करेक्ट एंड मोस्ट रेलेवेंट, सापेक्ष हो जाएगा आपके लिए वो। इसलिए बार बार प्रभुपाद जी 6 महीने के बाद पूछते थे लोगों को, आर यू कन्विंस्ड दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, इज ही अ पर्सन, आर यू कन्विंस्ड यू आर नॉट दिस बॉडी, आर यू कन्विंस्ड यू आर अ स्पिरिट सोल, आपको लोग क्या प्रभु जी ABC बातें करने बार बार, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि हम लोग भूल सकते हैं ना उसको, जीव तो भूल सकता है भाई, शुरुआत कहाँ से और किस लिए की थी और कुछ कर रहा है अभी। तो इसलिए ये श्रद्धा जो है ना, वो हर रोज हमको क्या कहते हैं उसको, दृढ़ करनी चाहिए, रीइंस्टेट, रिकन्फर्मेशन एवरीडे होना चाहिए, व्हाई वी आर हियर एंड व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग। फिर अपना जो आध्यात्मिक जीवन है वो आनंदमय बनेगा, प्रभु चाहे गृहस्थ रहो या विरक्त रहो, ब्रह्मचारी रहो घर में रहने वाले हो, आपका जीवन इक्वली आनंद रहेगा। हमारी संस्था जो शिक्षा देती है उसका यह है कि आप चाहे घर में रहो या मंदिर में ब्रह्मचारी बनकर रहो, आनंद में दोनों को रहना है। जो आनंद यहां पर भक्तों को मंदिर में ब्रह्मचारी बनकर मिल रहा है, वही गृहस्थों को भी प्राप्त होना है और वो भी मिलना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम अलग अलग स्तर पर नहीं है, उनका उद्देश्य तो सेम है, फिजिकल बाहर का जो स्वरूप है अलग अलग है, बाहर के नियम अलग है, लेकिन अल्टीमेट पर्पज सेम है, जाना आपको एक ही जगह पर है, पाना उसी भगवान को है, आपके कोई डिफरेंट भगवान नहीं, ब्रह्मचारी भगवान वही भगवान है जो 16,108 बीवी के साथ में भी शादी करते हैं, जो करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, उनको ही आपको मिलना है, उनको मुझे भी उनको ही मिलना है इसलिए हमारा मार्ग भी सेम है, हम लोग जब भी वही करते हैं, चार नियम भी पालन वही करते हैं, सारे नियम वही पालन करते हैं, क्योंकि पर्पज इज सेम, खाली कन्वीनियंस के सेक में हमने गृहस्थ लिया है, आपने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया है, बट पर्पज इज नॉट डिफरेंट, पर्पज इज सेम। और जो अनुभूतियां और लाभ यहां पर देवाहुति को भगवान दिला रहे हैं, वही हम सबको प्राप्त हो सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये इतना रेलेवेंट शास्त्र है, ऐसा नहीं कि भाई सुनना है अभी क्या है, पिछले युग की कथा है, चार युग पहले की कथा है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आजकल ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हम सोच सकते हैं ऐसे, दिस इज टू डिफिकल्ट टू प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड। आज का देखो जमाना कैसा है, देखो 500 की नोट भी खत्म हो गए, अभी कैसे करेंगे भक्ति भक्ति कितनी मुश्किलें हैं इसको करने में, देखो वो तमें था क्या, ऐसा कोई करेंसी कैंसिल हो गई थी क्या उनके समय, उनको कितना आसान था, देखो स्वयं मनु जैसे पिता थे उनके, और वो ऐसे कर्दमुनि जैसे पति मिल गए उनको, वातावरण भी अनुकूल था, आज की लड़कियां कैसे कर सकती हैं उसको, ऐसे हम बोल सकते हैं उसको, बट अगर हमारा श्रद्धा है तो ये सारी बातें आपके जीवन में हो सकती हैं, जो जो यहाँ पर अनुभूतियाँ हो रही है वो सब हमको मिल सकती है, इसमें विश्वास होना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने वो जो अनाकलनीय, हाँ, अनअंडरस्टैंडेबल, बहुत इनकंसीवेबल जो वस्तुएं हैं, वो हमारे लिए प्रैक्टिकल रूप में कंसीवेबल करके छोड़ के चले गए, वो आप तक, आप हमारे और आपके स्तर पे एप्लीकेबल, हाँ, करके वो चले गए, ये उनकी महानता है, ये उनका गौरव है। एक सामान्य व्यक्ति भी यहाँ पर ये उदाहरण देते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी कि जो हंटर था ना, वो आधे आधे जानवरों को काट कर छोड़ता था ऐसे तड़पने के लिए, उसका ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो चीटियों को भी लांग कर कूद कूद के चल रहा है, पागलों की तरह ऐसे डांसिंग करके कूद कूद के मिलने को जा रहा है गुरु जी को दंडवत करने के लिए। तो यहाँ पर ज्ञानी तो सोचते हैं कि नहीं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर एक पापी व्यक्ति जो अन्य जीवों को तड़पा तड़पा कर मार रहा है, उसका परिवर्तन देखो आप। और एक ऐसा था व्यक्ति, वो वाल्मीकि मुनि बन गया, रामायण का लेखक बन गया, वो सत्ययुग में ऐसा ही था, दुष्ट व्यक्ति था, क्रूर व्यक्ति था, तो वो तो बड़ा ज्ञानी वगैरह नहीं था उस समय ना, तपस्या करने वाला विरक्त ऐसा नहीं था, वो तो पूरी तरह से लगा हुआ था अपने कर्मों में और पाप करने में। ऐसे व्यक्ति को भी भगवान नारद मुनि की तरफ से जो मंत्र मिला भगवान के नाम का, उसकी वजह से वो परम संत बन गया, परम वैष्णव, रामायण होने के पहले उसका लेखन किया उन्होंने गुरु जी के पास से, मतलब कहाँ था और कहाँ पहुंच गया वो, तो इम्पॉसिबल था उसके लिए सोचना भी, उसकी स्थिति को देखकर वो भी प्राप्त हो गया। तो ये भक्ति मार्ग है, इसमें चमत्कार हो सकते हैं, हाँ, पूरा गुलाब जाम रबड़ी पकौड़ा खाते हुए भगवत धाम जा सकते हैं, चेतना होनी चाहिए, हाँ, कि वो गुलाब जाम रबड़ी वो तो भोग के लिए यहां पर नहीं आया है, लेकिन ये ए शाक कृष्णा स्वादिलो, इसको कृष्ण ने स्वीकार किया, उस भाव से खा रहे हैं उसको, ऐसे नहीं कि वो ना मुझे वो देना, वो मुझे वो देना, वो मत देना वो भाव से नहीं होना चाहिए, जो आ रहा है भगवान के कृपा से थाली से भोग लगकर उसको प्रसाद समझकर भोजन करना चाहिए, ये चेतना से गुलाब जाम खाओ, पकौड़ा खाओ, रबड़ी खाओ, भगवत धाम में पहुंचेंगे हम लोग अल्टीमेटली। ये जो मोमेंट हमारा है वो क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना को विकास करने के लिए इसको बनाया गया है। इंद्रिय भोग की चेतना को विकास करने के लिए नहीं बनाया है, कृष्ण भावना को बढ़ाने के लिए बनाया है। जब कृष्ण भावना इन सारे उपदेशों के साथ बढ़ेगी तो फिर वो कुछ खाएगा या नहीं खाएगा तो भी उसकी चेतना जो है वो बनी रहेगी उसके अंदर। दैट इज आवर अल्टीमेट गोल, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। अब बड़ा सैद्धांतिक ये शास्त्र है हमारा, हाँ सिद्धांतों से भरा हुआ है, कोई इमोशनल इसमें जार्गन नहीं है, जो भावना के ऊपर डिस्कशन नहीं किया लोगों को बहकाने के लिए, बिल्कुल शास्त्रोक्त। हाँ आत्मा शरीर भगवान उनका संबंध साधना प्रेम भाव इन सब दिव्य तत्वों पर ही आधारित है। तब जाकर जो देवगा होती अपनी माता को धीरे धीरे वो उच्च उच्च ज्ञान दे रहे हैं, अनुभूतियां दे रहे हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ, क्योंकि माता ने उसको सही रूप से स्वीकार किया, माता नदी रूप होकर मुक्त हो गई, भगवत धाम चली गई और कपिल देव जी अपने रास्ते में चले गए। तो ये सारे अनुभव अलग अलग रूप से, शायद हम नदी नहीं बन सकते मैं भी, हाँ वो उस उनका एक तरीका है उस समय का भगवत प्राप्ति का, हम अलग तरीके से भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन लक्ष्य हमारा देवाहुति का एक है, हमारा अलग नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु जी। फैमिली भाव में रहना चाहिए, पारिवारिक भावना में बहुत आवश्यक है। मैंने आपके प्रश्न के अनुसार एक प्रश्न मुझे एक परसों किया था एक यंग डिवोटी ने कानपुर के, वो कहते ये हमारा कानपुर का मंदिर नया नया है और हमको हम कांग्रीगेशन डेवलप कर रहे हैं तो किस भाव से करना चाहिए। तो आपका प्रश्न भी उसके जैसा ही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है भक्तों के बीच में प्रेमपूर्ण संबंध होना। हम भी अगर बाहर से अंदर आए मंदिर में तो क्या देखा कि यहाँ के लोग कितने प्रेमी हैं, कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, कितने काइंड और कितने दयालु हैं, कितना हेल्पफुल हैं, कितना स्वीट हैं, है ना, मन में कुछ कपट नहीं है उनके, कोई अपेक्षा नहीं है, निष्कपट भावना से हमको उपेश आते हैं तो हम अट्रैक्ट हो गए, है ना। तो बाहर के व्यक्ति जो आम जिंदगी में व्यस्त है वो यहाँ पर आकर्षित क्यों होते हैं, क्योंकि भक्तों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान देखते हैं जो बाहर को नहीं मिलता है उनको, बाहर वो ड्राई जिंदगी जी रहे हैं, तड़प रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं लोग आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। जैसे वो वृंदावन में उस दिन जो प्रभुपाद जी के पुजारी हैं, गौर निताई के पुजारी भी करते कभी फुल टाइम, उनके बेटी की शादी है कल, तो एक लड़की का पिता कितना बिजी होना चाहिए, कल शादी है पूरे दिन वृंदावन में, तो शाम को ऐसा पूरा अकॉर्डियन लेके वो हरे कृष्णा 50 लोग नाच रहे हैं, 2 घंटा झूल रहे हैं। मेरी बेटी की भी शादी हुई है, मैंने सोचा अरे देखो इसको जीवन कहते हैं, दिस इज लाइफ, फ्री ऑफ टेंशन, सो हैप्पी एंड ब्लिसफुल 2 आवर्स। हाँ उस शाम को जिस अगले दिन शादी है तो वो आनंद से भगवान के नाम का झूमते हुए कीर्तन कर रहा है, तो उसको देखकर आप आकर्षित हो जाएंगे, वाओ दिस इज वंडरफुल। तो वो अंदर मंदिर में या मंदिर के बाहर जब भक्तों के बीच में ऐसे प्रेममय आदान प्रदान का संबंध देखेगा तो बाहर के लोग आकर्षित हो जाएंगे। और आप जब मुश्किल में आ जाएंगे, समझो मैं आपको बुखार आ गया, दस्त लग गया, आपको एक्सीडेंट हो गया, आपका कुछ और समस्या हो गई, तो आपके साथ में जो भक्त है वो सब आपकी सेवा में आपकी देखभाल करने के लगे हुए हैं, कुछ कुछ त्याग करके आपके साथ में आकर आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको लगा यस मैं इनका पूरी तरह आश्रय ले सकता हूं, इस अनुभव के साथ में मैं कह सकता हूं कि मुझे और किसी व्यक्तियों का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे सुख हो या दुख हो मेरा आश्रय तो यही है, मेरा पूरा देखभाल योगक्षेमम वहाम्यहम हम भगवान अपने भक्तों के माध्यम से यहीं पर करेंगे। तो आपको फिर मम्मी की याद आएगी, बड़े भाई की याद आएगी, प्रेममयी भाभी की याद आएगी बाद में, जिसको छोड़कर आप यहां पर आए नहीं आएगी। तो भक्तों को ये वातावरण ऐसा निर्माण करना है। हम लोग प्रचार करते हैं, प्रवचन देते हैं, साधना कर सब कुछ करते हैं, लेकिन सही हमारी परीक्षा जो है कृष्ण भावना की तब होती है जब कोई अपना सामने वाला डिवोटी जो है वो बीमार पड़ता है या कठिनाई में आता है, कुछ चिंता होती है उसको, परेशानी होती है, तो उस समय जब आप उनको कवर करते हो अच्छी तरह से, सहायता करते हो, तो लोगों का फिर भक्ति के मार्ग का विश्वास बढ़ जाता है, आपका भी बढ़ जाता है, दृढ़ हो जाता है कि यस जो आश्रय मैंने लिया है वो परिपूर्ण है, वो मुझे संकट समय पर त्याग करके भगा कर छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई बस डांसिंग फेस्ट फीस्टिंग प्रीचिंग सब कुछ मंदिर में, बीमार पड़ेगा तो घर पे, तो फिर आपको लगेगा कि जब तो आनंद का समय तो मंदिर में रहता हूं, जब भी रियल जरूरत होती है तो मेरे घर जाता हूं। मतलब हमारा सही शेल्टर अभी तक तो भगवान के चरणों में नहीं है, लेकिन वैसा वातावरण और अनुभव लोगों को देने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा ना पहले। वी हैव टू टेक केयर ऑफ इच अदर। ऐसा छोटा परिवार हो बड़ा परिवार हो, लेकिन वो जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट जो है ना, सुरक्षित वातावरण, वो हमको उत्पन्न करना है, वही आध्यात्मिक जीवन का अनुभव देगा आपको। कैसे? गोलोक धाम में वही है, सब परिवार के लोग हैं वहां पर, यशोदा मई है, नंद महाराज है, भाई लोग हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, फिर सखियां हैं, सखा हैं, गाय हैं, उनके बीच में क्या पढ़ते हो आप? केवल आनंद का आदान प्रदान है, सब लोग एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वर को प्रेम दे रहे हैं, उनके लिए केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। तो गौलोक का जीवन जो है उसका सैंपल हमको यहाँ पर निर्माण करना है, इसलिए रोज कथा सुननी है, रोज हमको अपने आप को विश्वास मिलाना है। तो ये जो छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, ये जो प्रेम की भावना है जो है ना, पारिवारिक भावना, ये हमारा स्ट्रेंथ है, इसी को देखकर बाहर भी लोग फिर आकर्षित होंगे और अपने जीवन को इसी ढांचे में, चाहे बाहर हो रहते हुए, ढांचे में बद्ध कर लेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, उनको दीजिए थोड़ा। हरे कृष्णा।
जैसे आपने क्लास में कहा कि हमें रोज ये हमें रीइंस्टेट करना चाहिए अपने फीलिंग्स में कि हम यहाँ पे क्यों आए थे, हमने क्यों कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन करी थी, तो ऐसा होता है कि हमें थ्योरेटिकली पता होता है, बट शुरू शुरू में जैसे आते हैं तो बहुत एंथुसियाज्म से चैंटिंग करते हैं, डिवोटीज की एसोसिएशन लेते हैं, मंदिर आते हैं, जप करते हैं, बट धीरे धीरे वो सारी चीजें मैकेनिकली हो जाती है, फिर याद आता है कि नहीं हमें ढंग से करना है, तो थ्योरेटिकली पता है बट प्रैक्टिकली एक
प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न क्या है?
प्रश्न ये तो ये गैप कैसे हम ब्रिज करेंगे?
कंटिन्यूअस क्वालिटी एसोसिएशन, ये उसका उत्तर है। हमारे अगर आपको पढ़ाई करनी है, जो आपको MBBS करना है या इंजीनियरिंग करना है या MBA करना है और आपको अव्वल अव्वल मार्क लाने हैं, तो आप क्या करेंगे? हमेशा अच्छे विद्यार्थियों के साथ रहेंगे आप, कॉन्स्टेंटली यू विल बी इन द कंपनी ऑफ अ गुड स्टूडेंट, स्टूडियस स्टूडेंट, परफॉर्मिंग स्टूडेंट, और आप संग छूट गया तो आपके मार्क्स भी कम हो जाएंगे, उनके कंपनी में रहेंगे तो आपके हमेशा पढ़ाई भी होती रहेगी अच्छी तरह से लगातार और मार्क भी आपके अच्छे आएंगे। उसी तरह से जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं और भक्ति मार्ग में हमको लगातार अच्छी प्रगति करनी है, तो हमको लगातार गिने चुने अच्छे भक्तों का नित्य संग होना चाहिए, नित्य यानी कि नियमित संग होना चाहिए, रेगुलेटेड कंटिन्यूअस एसोसिएशन। किसी भी चीज़, अगर आपको कुकिंग सीखना है तो आपको अच्छे कुक्स माताजियों के साथ में रहना पड़ेगा, आपको कीर्तन सीखना है, गाना सीखना है, तो आपको अच्छे कीर्तनीय लोगों के साथ में बैठकर आपको चलना होगा। अगर आपको बहुत शास्त्र सुनना है तो आपको शास्त्र के पारंगत विद्वान लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको साधना अच्छी करनी है तो साधना अच्छे करने वाले भक्तों के साथ में आपको संबंध रखना पड़ेगा, यू बी इन टच, ऑलवेज वी नीड टू बी कनेक्टेड। अगर बल्ब को हमेशा प्रकाश देना है तो बल्ब को हमेशा वो जो सोर्स है बिजली का उस पर कनेक्टेड रह के बटन हमेशा ऑन होना चाहिए, तब जाकर वो बल्ब आपको हमेशा के लिए उतनी रोशनी देते हुए नजर आएगा। तो जितना बल्ब को आवश्यकता है हमेशा कनेक्टेड रहने की, उतनी आवश्यकता हमको भी है भगवान के भक्तों के साथ में कनेक्टेड रहने की। तो उस स्थिति में हमको कहा गया है कि भक्त तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको आपका संग चुनना चाहिए कि मुझे इसमें से अच्छे साधना करने वाले भक्त चाहिए, और मैं स्त्री हूं तो मुझे वो स्त्री ग्रुप में वो भक्त मिलने चाहिए। ऐसे आपको चुनना होगा व्हाट इज फेवरेबल फॉर योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मुझे देखना होगा मेरे भक्ति के अनुकूल मुझे किसका संग चाहिए और उनको खोजना होगा मुझे। आम तौर पे सब कुछ आम तौर पे मिलता नहीं है, वी हैव टू वर्क फॉर इट। तो जैसे जब हम ऐसे गिने चुने अच्छे भक्तों के साथ में नियमित संग करेंगे, बाकी का अनादर नहीं करेंगे लेकिन उनके साथ में कॉन्स्टेंटली एफर्टफुल सत्संग करेंगे, तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी। रही बात सुबह ना उठने की, आप लोग सर्कल बना दो 4-5 डिवोटीज का और बोलो मुझे फ़ोन करो, तो एक वक्त तो फ़ोन करेगा, आपका अलार्म बजेगा, फिर आप बंद करके सो जाएंगे, लेकिन आपको किसी दोस्त का फ़ोन आएगा तो आप उठेंगे, फिर बोलेंगे शुक्रवार को हम साथ में बैठ के जप करेंगे, संडे को साथ में बैठ के जप करेंगे, आप मेरे घर पे आ जाना, कभी तुम मेरे घर पे आ जाना, कभी आप मैं आपके घर पे आ जाऊंगी, ऐसा सर्कल बना देना। तो फिर वो एक दूसरे के पुश के वजह से आप जप करते रहेंगे। अरे आज छुट्टी है, आज कोई त्यौहार है, गवर्नमेंट हॉलीडे है, चलो आज बैठ के जप करते हैं, अरे आज तो दीपावली का दिन है, चलो सब बैठ के जप करते हैं, तो फिर आपका लक्ष्य साध्य हुआ। आपको जो भी चाहिए ना, उस पर आपको चिंतन करना होगा कि कैसे मुझे मिलेगा। हाँ, जब कोई कन्या विवाह करना चाहती है, कैसे वो मेडिटेट करती है, कैसा मुझे पति चाहिए, लिस्ट बनाती है, हाउ आई वांट, व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड आई वांट, फिर माता पिता को बताते हैं, माता पिता उस तरह से प्रयास करते हैं, लगे रहते हैं उसके अंदर, तब जाकर एक दिन फिर वो क्लोज बाय पति मिल जाता है। वैसे ही भगवान की बात है, ठीक है। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, सबकी की जो है ना वो प्रॉपर एसोसिएशन है, द की ऑफ एवरीथिंग इज प्रॉपर एसोसिएशन। यस थोड़ा जोर से बोलिए।
आपका साक्षात्कार जानना चाहते थे कि आपको हॉस्पिस में सेवा करते हैं, तो वहाँ पे बहुत से मतलब लोग आते हैं जो मतलब बीमार हैं या कष्ट में हैं, और शरीर से तो हमारी सबसे बड़ी आसक्ति है, तो उस स्थिति में मतलब आप उनको डिवोशनल ट्रीटमेंट भी देते हैं, तो उस स्थिति में वो मतलब वो जो डिवोशनल लव है उनको कितना फायदा रहता है, या आप कुछ साक्षात्कार करते हैं?
ये बहुत चमत्कारी बात है। वो कैसा है ना, अभी आप लोग हम लोग कभी देखते हैं कि जिनको असाध्य बीमारी हो चुकी है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँचने के पहले उन्होंने बहुत कोशिश की होती है, यहाँ पर कीमोथेरेपी लिया होता है, वहाँ पर रेडिएशन लिया होता है, वहाँ पर सर्जरी की होती है, वहाँ पर ये फलानी दवा होम्योपैथी मसाज ये विभूति ये दवाई हम सब कुछ लिया होता है, जेब खाली हो जाती है उनकी, फिर वो पता चलता है कि इसका भी कुछ नहीं होने वाला है, तब हमारे पास पहुँचते हैं। वो पता हो गया अभी ये ठीक नहीं होने वाला है, अभी तो दिन गिनने हैं खाली बस, तो ऑलरेडी कहते हैं ना उसको एग्जॉस्टेड इमोशनली फाइनेंशियली सोशली मेंटली इंटेलेक्चुअली एग्जॉस्टेड, ऐसे कंडीशन में हमारे पास हमें आते हो, और जब आगे दिन बढ़ते हैं ना तो जो भी हम भी कुछ कर रहे हैं उनके लिए दर्द निवारण दवा दे रहे हैं, वो भी धीरे धीरे उनका असर होने का कम हो जाता है। आखिर क्या बचता है, केवल प्रेम बचता है, जाना तो है ही, और आखिरी मोमेंट पे हम देखते हैं कि हमारी भी जो मशीनरी है वो भी फेल हो जाती है, मरीज भी समझ रहा है कि ये फेल हो रहा है सब कुछ, अभी सब कुछ इज गेटिंग ओवर नाउ, और हमारे पास जो भी साधन है जो भी रिसोर्स है वो सब अभी एक एक करके बेकार होते जा रहे हैं। तो यू कम टू पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अभी तो एक ही सहारा है, सारे सहारे टूटते हुए नजर आ रहे हैं, एक ही सहारा दिख रहा है जो चलेगा इसमें, वो है भगवान के भक्तों का प्रेम, और भगवान के भक्तों का प्रेम हमेशा भगवत नाम सेवा इसके माध्यम से प्रकट होता है, भगवान की स्मृति दिलाने का प्रयत्न इस माध्यम से प्रकट होता है। तब हम ना सारे शरीर के स्तर से विरक्त होकर आत्मा के सर पे अपने आप आ जाते हैं, प्रकृति आपको लाती है, अगर आप अपने आप नहीं आ रहे हो तो प्रकृति आपको मजबूर करके उस स्तर पर लेकर आएगी। जब उस स्तर पर भक्त आपको प्रेम देखभाल केयर देंगे तो आदमी, मैंने देखा हुआ है इतना कष्ट में दुख प्राप्त करने वाला आदमी है खुशी से झूम जाता है वो, ही इज ब्लिसफुल, ऐसा जर्जर शरीर है उसका, हड्डी और पसीना है खाली, क्या बोलते हैं मांस भी कुछ नहीं है, चर्म और खाली हड्डी है, इतना दुर्बल हो गया वो, लेकिन चेहरे में इतनी रौनक और इतनी खुशियां उसको प्राप्त होती है एंड में, हमने देखा हुआ है, कल तक रो रहा है आज आनंद में, दवाई बंद करो बोल रहे हैं, दर्द को सहन करने की शक्ति भी आ रही है, सब हमने देखा है, भक्ति विदान में देखा है, हॉस्पिटल मुंबई में देखा है, हॉस्पिस में यहाँ पर देखा है, क्योंकि असली ना चीज़ क्या है, असली हम लोग आत्मा है, ये हकीकत है, चाहे हम समझे कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, जवान हूँ, इंडियन हूँ, फॉरेनर हूँ, ये ठीक है, लेकिन असलियत जो है, वास्तविकता जो है कि हम आत्मा हैं। और उस स्तर पर जब हम जबरदस्ती या सोच समझ कर पहुँचते हैं, तो उस समय उस स्थिति में आनंद को ही प्राप्त करना है आपको, है ना। मैंगो जूस के शॉप पर जाएंगे तो आपको मैंगो जूस ही मिलेगा, जो करेला जूस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैंगो जूस की दुकान में गए आप, मैंगो के खेत में गए आप। वैसे ही आत्मा के स्तर पर कैसे भी आप पहुंच गए और भक्त आपको उसी स्तर पर कुछ पोषण दे रहे हैं, तो आपको आनंद ही होना है। तब आपको समझेगा कि हमने जब मंदिर में आए थे तो पहली बार क्या सुना था, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। तो आपका साक्षात्कार हुआ ना उस समय, यस प्रभुपाद जी ने हमको पहले दिन कहा था यू आर नॉट दिस बॉडी। इतना समय लगा हमको समझने के लिए उसको, आगे भी और समझ में आएगा वो कि कैसे आत्मा का स्तर ही वास्तविक स्तर है, बाकी सारे स्तर टूटते हुए नजर आएंगे। प्लीज वेट एंड वॉच, आप चाहो या ना चाहो हर चीज टूटते हुए नजर आएगी आपको, और एक ही चीज प्रोमिनेंट हो जाएगी उसके बाद में, जो प्रोमिनेंट आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी, आपको खाली पता चल रहा है कि ये ऐसा ऐसा है। आज भी वही चीज प्रोमिनेंट है, हम लोग उसको अनुभूति नहीं कर पा रहे। तो सिंसियर भक्त रहेंगे हम लोग तो आप उस अनुभूति तक पहुंचेंगे। तो ये जो आध्यात्मिक पोषण है ना, ये सबसे पावरफुल शक्ति है। अल्टीमेटली सब लोग मरने वाले हैं, चाहे भक्त हो या नहीं हो, है ना, और सबको शरीर बदलना है। लेकिन अगर आप भगवत धाम पहुंच गए, आपकी आत्मा भगवत धाम जाएगी, तो आपका लक्ष्य पूरा हो गया ना। तो वो करने के लिए अल्टीमेटली यही तो है। उस समय आपका पैसा काम नहीं आएगा आपका, हाँ, परिवार में 50 लोग हैं वो काम नहीं आएंगे, आपके बड़ा प्रॉपर्टी है यहाँ पर वहाँ पर भारत भर, वो नहीं काम आएगी। डॉक्टर सारे कॉन्टैक्ट में आपके हैं वो काम नहीं आएंगे, नर्स पहचान की घर में नर्सेस हैं, काम में नहीं आएंगे। क्या काम में आएगा उस समय? भगवान नाम काम आएगा। और भगवान नाम उस समय प्राप्त होने पर जो रौनक दिखती है चेहरे पर, आके आप खुद देखिए, फिर आपको पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे भूखे व्यक्ति को जो उसको चाहिए वो जब मिलता है, तो जो उसके चेहरे पर खुशी होती है ना, वो उस व्यक्ति के चेहरे पर खुशी होती है उस समय। जो आत्मा के सर पर उसको जो चाहिए वो मिल जाता है, तब उसको पता चलता है कि अरे मैं इतना जिंदगी वेस्ट क्यों किया, जब मुझे यही प्राप्त करना था, क्यों यहाँ वहाँ भटका मैं अलग अलग उपाधियों के आधार पर। तो ऑस्पिस ये ऐसी जगह है, वो तो आध्यात्मिक अनुभूतियों का भंडार है, वो स्टोर हाउस ऑफ रियलाइजेशन, यू टू सी, क्योंकि जिंदगी की सच्ची रियलिटी आपको वहां दिखाई पड़ती है। बाकी लोग यहां पर पैसे कमा के मजा कर रहे हैं, सब कुछ घूम रहे हैं, बड़े बड़े दौलत के लोग, तो ठीक है लगा, ठीक है फाइन, बट दैट इज रियलिटी, क्योंकि सारे लोगों को वहां पर अल्टीमेटली पहुंचना है। और उस समय क्या होगा ये अल्टीमेट डिसीजन है आपका, तो वहां पर बाकी कुछ नहीं चलेगा। यू कैनॉट से नहीं नहीं ये रियलिटी नहीं है, मैं इसको फेस नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। यू विल हैव टू बी ब्रॉट टू दैट सिचुएशन ऑफ डेथ, सेपरेटिंग बॉडी फ्रॉम द सोल, जीवन को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होना है। उस सत्य को सबको स्वीकार ही करना है उस समय। तो उस समय क्या चलेगा, वो करेंसी अभी भी चलेगा जो उस समय चलने वाला है, प्लीज अंडरस्टैंड। क्योंकि उस समय भी आप आत्मा हो और आज भी आत्मा हो, आज लगे हुए शरीर के अंदर आसक्त बनकर, उस समय विरक्त हो, लेकिन आज भी आत्मा हो, तब भी आत्मा हो, तब भी वो करंसी चल रही थी, वो आज भी चल रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करंसी कभी भी कोई भी गवर्नमेंट कैंसिल नहीं कर सकती, उसकी वैल्यू कैंसिल नहीं कर सकती है, उसको प्रभावहीन नहीं कर सकती है। ये कॉन्स्टेंटली प्रभावशाली करंसी है, जो आपको जीवन की हर स्थिति में, जन्म की स्थिति में, 6 महीना की स्थिति में, 10 साल की स्थिति में, बूढ़ा स्थिति में, जवान स्थिति में, हर स्थिति में वो आपको, आप उसको एनकैश कर सकते हो। किसी भी स्थिति में, किसी भी देश में, किसी भी जाति में, किसी भी अवस्था में, ज्ञान के आप ये करेंसी को अगर अपनाएंगे, तो आपको वही अनुभव मिलेगा जो उस व्यक्ति को मरते समय मिल रहा है। तो वाई वेट टिल द मोमेंट ऑफ डेथ, दिस इज नॉट राइट। प्रभुपाद इज गिविंग यू राइट नाउ ओनली। जब हम मृत्यु की स्थिति में नहीं है तभी भी आपको वो बता रहे हैं कि दिस इज सत्य, ये सत्य है। बट सम पीपल लाइक अस अनफॉर्चुनेटली हैव टू गो टू दैट स्टेज टू अंडरस्टैंड, डजंट मैटर। अंतिम समय समझ में आया ना तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, अभी समझ में आया तो अच्छा है, देखते रहो, एक गया दूसरा गया तीसरा गया, सबको सेवा करो और देखो देखो क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है, कैसी स्थितियां होती है। सबको देखा है हमने, बड़े बड़े स्वामियों को देखा है, सामान्य भक्तों को देखा है, ब्रजवासियों को देखा है, हर व्यक्तियों को देखा है, अलग अलग लोगों को देखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है आप कौन हो, फाइनली आपका बैटल जो है ना वो सबके लिए सेम रहता है। चाहे आप गुरु हो, आपके हजारों शिष्य हैं, चाहे आप सामान्य रिक्शा ड्राइवर हो ब्रजवासी, चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप जवान हो, बैटल रिमेन सेम और बैटल का उपाय भी रिमेन सेम। तो क्यों ना उसको अभी से अपनाएं। वाई बिकम सीरियस ओनली एट द एंड ऑफ द लाइफ, वाई नॉट बिकम सीरियस ड्यूरिंग द लाइफ एंड मेक दैट इवेंट ब्लिसफुल एंड अ फेस्टिवल। हाँ, हॉस्पिस बनाया किस लिए है? हॉस्पिस बनाया इसलिए है कि मृत्यु की घटना एक दुर्घटना ना बनते हुए एक महोत्सव बन जाए। जीव का इस शरीर से भगवत धाम में जाने की यात्रा जो है एक महोत्सव है, उसको महोत्सव बनाने के लिए हॉस्पिस बनाया है, ताकि हर एक की जर्नी जो बड़ी दुखदाई दर्द भरी और रोने वाली होती है उसको आनंदमय महोत्सव बनाया जाए। ये मुमकिन है, इट्स पॉसिबल। हरे कृष्णा। यस, प्रभु जी को प्रश्न है। प्रश्न थोड़ा जोर से बोलिए आप। हाँ, नाम स्मरण, फिर भागवत जी। हाँ, नाम सबसे पहले एसोसिएशन। यस, Yes.
When we come here, when we come after the quality, then only then we get after get the quality. Without quality, we can't. We don't get quality. जब ऐसा भी करें, ultimately becomes quality. तो मेरा जो basic चीज़ इसमें आ रहा हूँ, वो ये है कि qualitative association कई बार प्रयास करने के बाद जो भी हमें नहीं मिलती, या भगवान की क्या इच्छा होती है, बहुत देर के बाद मिलती है, या उसमें भी गैप रहता है कौन जाने,
तो क्या करें?
यस, उसमें उसमें देखो एक इसका जनरल आंसर है जो मिलता है आमतौर से क्लास में कि जब भगवान की कृपा होगी तो ऐसा हो जाएगा, बट दिस इज अ जनरल आंसर। बट क्या आप इसके बारे में कुछ कह सकते हो?
जो चीज़ मुश्किल होती है और कभी कभी प्रयास करने पर नहीं मिलती है, हाँ मतलब आप समझ रहे हैं कि मैंने तो प्रयास किया लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, तो उस समय भक्त क्या करता है? वो भगवान के साथ जाके रोता है। जैसे आप किसी बच्चे को चॉकलेट चाहिए और माँ उसको नहीं दे रही है, तो बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, नहीं दे रही है, लेकिन वो बहुत 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 रोएगा और रोते रहेगा, तो मम्मी बोलेगी ले भाई ले, बस रोना बंद कर दे, अभी ले ले। वो एक मैंने आपको ऐसे पारिवारिक उदाहरण दिया। उसी तरह से जो चीज़ बहुत कीमती होती है, मूल्यवान होती है, वो कभी भी जब तक हमें तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं होती है उसके लिए, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, तब तक प्राप्त नहीं होती है। द्रौपदी का कैसा हुआ? उसको तो सुरक्षा चाहिए थी, तो पहले पति देव को पुकार रही है, फिर भीष्म देव को पुकारा, द्रोण को पुकारा, फिर इसको पुकारा, उसको पुकारा। आप कहेंगे भगवान कितने दुष्ट है, देखो इतने देर तक देखते रहे तमाशा क्या चल रहा है। लेकिन जब उन्होंने तीव्रता से एक्सक्लूसिव एकमेव आश्रय ग्रहण करने का प्रयास किया, तत्क्षण प्रकट हो गए वो। मतलब जब एक्सक्लूसिव हो जाते हैं हम लोग कि अभी हमको चाहिए ही चाहिए वो, तो भगवान दे देंगे आपको। ऐसा मत समझना कि जब उनकी कृपा होगी तब मिलेगा, तो फिर पता नहीं कब कृपा होगी। आप मांगो जाके, रो उनके पास। छोटी सी कहानी है, जब शिवजी भगवान को मिलने आए नंदगांव में, यशोदा मैया ने धुतकार दिया उनको, चले जाओ कोई दर्शन वर्शन नहीं मिलेगा, आप सब लोग राक्षस हो, कंस के प्रतिनिधि हो, हाँ सब कभी बाड़ी बंद कराते हो, कभी लड़की बंद कराते हो, आप ऋषि बंद कराए हो, मैं नहीं फंसने वाली इसके अंदर, चले जाओ। दरवाजा लगा दिया मुंह पर उसके। तो जो आसान था अब दर्शन भगवान का, इतना आसान था कि अभी मैया ले आएगी दर्शन हो जाएगा, लेकिन दरवाजा मुंह में बंद कर दिया। तो गए वन में आशीश्वरम ने, पुकारा बैठ कर उन्होंने, ऐसा रोए कि भगवान को भी मजबूर हो गए भगवान दर्शन देने के लिए, खुद रोने लगे, फिर उनको बुलाया गया और दर्शन दिया गया। तो इसमें क्या है, उनको जो चाहिए था पहले नहीं मिला, फिर उन्होंने ऐसा पुकारा कि भगवान को भी अपना अस्त्र निकालना पड़ा रोने वाला दर्शन देने के लिए। तो वो केवल वेट कर रहे हैं कि हमको कितना चाहिए वो, हाउ मच वी वॉन्ट, यस वी वॉन्ट बट हाउ मच डेस्परेट वी आर, दैट वेन ही इज कन्विंस्ड कुछ भी समय लगेगा नहीं, आपको तुरंत मिलेगा। इसलिए रोज हम दर्शन क्यों करने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं, प्लीड हाँ विनती करने आते हैं, भगवान आपके पास पहुंचना है हमको, कृपा करो आप, जो भी जरूरी है, सत्संग जरूरी है, नाम रुचि जरूरी है, सेवा जरूरी है, प्लीज गिव। वी हैव टू, ऐसा कहते हैं कि रो रो के प्रार्थना करना चाहिए भगवान को। उसका उदाहरण आशीश्वर महादेव है। आशा भी कैसे रखना है वो शिवजी महाराज ने दिखाया हमको कि हाउ टू डिजायर फॉर कृष्णा, व्हाट इज द मेथड। वो आंसू होते हैं ना, प्रामाणिक आंसू जो निकलते हैं, भगवान को बड़ा पिघला देते हैं। नित्यानंद प्रभु भी कहते हैं कि उन भगवान नाम लेते हुए किसी के कोने में अगर एक अश्रु बिंदु भी दिखाई दिया ना, मैं अपने आप को उसको बेच देता हूँ उस व्यक्ति के लिए। तो आप अगर चाहते हैं क्वालिटी एसोसिएशन, वो यहीं कहीं है, आप भगवान से पुकारिए, आपको मिलता रहेगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्री श्री राधा माधव भगवान की जय हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।